सुमित्रा नंदन पंत पहला भाग प्रथम रश्मि। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी पाया तूने यह गाना। शब्दार्थ, रश्मि से तात्पर्य है किरण, रंगिणी का अर्थ है रंगों वाली, अनेक कीड़ा का अर्थ है कौतुक एवं अभिनय करने वाली। संदर्भ, बाल विहंगनी सृष्टि के जागने से पूर्व ही प्रातः आगमन को जानकर चहक उठती है, कवि को जिज्ञासा होती है कि उसका आभास कैसे होता है। इसी जिज्ञासा को लेकर वह बाल विहंगनी से प्रश्न करता है। व्याख्या, हे बहुरंगिणी बाल विहंगनी तुझे प्रभात की प्रथम सूर्य किरण के आने का ज्ञान पहले से ही कैसे हो जाता है। उसके स्वागत में तू जो यह मधुर गाना गा उठती है उसको तूने कहाँ से सीखा है। विशेष, नंबर वन, पंत जी की जिज्ञासा वृत्ति जागृत होकर सोचती है कि बाल विहंगिनी में तो मानव सृष्टि से भी अधिक चेतना शक्ति है। उसी की चहचहाट के मधुर गीत को सुनकर मानव सृष्टि को सवेरा होने की सूचना मिलती है। जबकि जिज्ञासा यह भी जानना चाहती है कि वह कौन सा रहस्यमय कलाकार है जिसने बाल विहंगिनी को इतना मधुर बना दिया है, इतना मधुर स्वर दिया है। दूसरा पॉइंट, पंत जी की यह जिज्ञासा ही उसके प्रकृति मूलक रहस्यवाद का आधार है। तीसरा पॉइंट, शैली भी पक्षियों के इसी मधुर कलरों से आश्चर्यचकित होकर कह उठे थे, दैट फ्रॉम हिवन और नियर इट पुअरेस्ट दे फुल हर्ट इन द प्रोफ्यूज स्ट्रेंथ ऑफ अनप्रीमेडिएटेड आर्ट। पॉइंट नंबर चार, कवि ने प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण पूर्ण बिंब उपस्थित किया है। सवेरा होने से पूर्व पक्षियों के कलरों का मधुर संगीत समस्त सृष्टि को सवेरा होने की सूचना देकर जागृत करता है। बाल विहंगिनी यहाँ पक्षियों का प्रतिनिधित्व करती है। पॉइंट नंबर पाँच, रंगिणी विहंगिनी का साभिप्राय विशेषण है। रंगिणी शब्द लाक्षणिक है, इसके द्वारा रंगमंच का दृश्य उपस्थित हो जाता है। रंगिणी शब्द बहुविध वेश धारण करके उसके क्रीड़ा कौतुक को व्यक्त करता है। जिस प्रकार नाटक प्रारंभ होने से पूर्व नटी और नट रंगमंच पर आकर नांदी पाठ के रूप में नाटक की सूचना देते हैं, उसी प्रकार बाल विहंगिनी नटी के रूप में प्रकृति के रंगमंच पर आकर सृष्टि को अपने मधुर कलरों से सवेरा होने की सूचना देती है। पॉइंट नंबर सिक्स, तू का संबोधन सूचित कहता है कि बाल विहंगिनी कवि की चिर परिचित है। वह प्रातः काल वेला में पक्षियों के मधुर कलरों को सुनता रहा है। सोई थी तू स्वप्न नीड में पंखों के सुख में छिपकर, ऊंग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। सच किरणों से उतर उतर कर भू पर काम चर नभचर, चूम नवल कलियों का मृदुमुख सिखा रहे थे मुस्काना। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, बिचर रहे थे स्वप्न अवनि में तमने था मंडप ताना। कूक उठी सहसा तरुवासिनी गा तू स्वागत का गाना, किसने तुमको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। शब्दार्थ, नीड़ का अर्थ है घोंसला, पंखों के मुख में छिप कर का तात्पर्य है पंख समेट कर, ऊंघ रहे थे तात्पर्य है उनीदे हो रहे थे, प्रहरी से तात्पर्य है पहरेदार, काम रूप का अर्थ है इच्छा अनुसार बदलने वाले, नवचर से तात्पर्य है आचरण में आकाश में विचरण करने वाले, चांदनी ओस की बूंदे आदि, नाना से तात्पर्य है अनेक, स्नेह का अर्थ है तेल और प्रेम, अंतर्यामिनी मतलब भीतरी रहस्य जानने वाली। संदर्भ, कवि बाल विहंगिनी के गीत आरंभ करने की पूर्व परिस्थितियों का चित्रण करते हुए उससे प्रश्न कर रहा है। व्याख्या। हे बाल विहंगिनी, जब तू रात्र के समय घोंसले में पंखों को समेट कर सुखपूर्वक सोती हुई मीठे मीठे सपनों का आनंद ले रही थी और तेरे द्वार पर असंख्य निद्रालय जुगनू के प्रहरी के समान घूम घूम कर पहरा दे रहे थे। हे बाल विहंगिनी, जब तू सुख की मधुर निद्रा में सो रही थी उस समय इच्छा अनुसार अपना रूप धारण करने वाली परियां चंद्रमा की किरणों के सहारे आकाश के नीचे पृथ्वी पर उतर कर नई कलियों का मुख चूमती थी और उनको मुस्काना सिखा रही थी। जिस प्रकार तेल के समाप्त होने पर दीपक मंद हो जाते हैं, उसी प्रकार अब तारों की ज्योति मंद हो गई उसी प्रकार अब तारों की ज्योति मंद हो गई है। पवन न चलने के कारण वृक्षों के तने निश्चल निर्जीव से नीचे झुके पड़े थे। समस्त पृथ्वी स्वप्नों में निमग्न थी, अर्थात समस्त प्राणी निद्रा में डूबे हुए स्वप्न देख रहे थे। सारा संसार अंधकार में डूबा हुआ था। ऐसा लगता था मानो अंधकार ने सारे संसार पर मंडल ही तान दिया हो। हे वृक्ष पर निवास करने वाली बाल विहंगनी, ऐसे समय में तू आने वाले प्रभात का स्वागत गान करती हुई कूक उठी थी। हे अंतर्यामिनी, तुझे किसने प्रभात की उस प्रथम किरण के आगमन के पहले ही सूचना दे दी। विशेष पॉइंट नंबर एक, ऊंघ रहे थे मैं अंतिम रात में पहरा देने वाले का यथार्थ चित्र प्रस्तुत हो गया है। रात भर पहरा देते हुए अंतिम रात में पहरेदार ऊंघने लगते हैं। पॉइंट नंबर दो, कामरूप रात्र के अंधकार में सारी माया चलती है। पॉइंट नंबर थ्री, कामरूप नभचर को प्रेमी और नौकलियों को प्रेमिका बनाने में कवि की सुकुमार कल्पना बड़ी सुंदर है। पॉइंट नंबर फोर, कूक उठी में सहसा क्रिया होने की ध्वनि निकलती है। बाल विहंगनी को अचानक ही सवेरा होने का आभास होता है। पॉइंट नंबर फाइव, अंतर्यामिनी संबोधन बड़ा ही उपयुक्त है, उसमें कवि की जिज्ञासा का उत्तर भी निहित है। विहंग बालिका मन के रहस्यों और परोक्ष घटनाओं को भी जानने वाली है। अलंकार का मानवीकरण, जुगनू का प्रहरी होने, कामरूप नभचरों को कलियों को चूम कर उन्हें मुस्काना सिखाना, तर के पत्तों के पातों का शून्य होना, बाल विहंगनी के स्वागत गान गाने में मानवीय क्रियाओं का उल्लेख है। ख, रूपक अलंकार, स्वप्न नीड़ तारों के दीपक में रूपक है। विचर रहे थे से लेकर ताना तक में उत्प्रेक्षा अलंकार, स्नेह में श्लेष अलंकार। स्नेह का दो अर्थ है, तेल और प्रेम, इसी कारण इसमें श्लेष अलंकार है। जुगनू की समानता प्रहरी से की जाने के कारण उपमा अलंकार, यहाँ उपमान योजना में सर्वथा नवीनता और मौलिकता है। निकल सृष्टि के अंध गर्भ से छाया तन बहु छायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निश्चर, चला कुहक टोना माना, छिपा रही थी मुख शशिबाला निशी के श्रम होशहीन, कमल क्रोण में बंदी था अली कोक शोक से दीवाना, मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना, तूने ही पहले बहुदर्शनी गाया जागृत का गाना, श्री सुख सौरभ का नभचारिणी गूथ दिया ताना बाना। शब्दार्थ अंध गर्भ का तात्पर्य है अंधकार के भीतर, छाया तन का तात्पर्य है छाया जैसे अस्पष्ट दुधले शरीर वाले, छायाहीन से तात्पर्य है जिसके शरीर की छाया नहीं पड़ती अर्थात भूत, चक्र का तात्पर्य है जाल, खल से तात्पर्य है दुष्ट, निश्चर का तात्पर्य है रात्र में विचरण करने वाला राक्षस आदि, कुहुक का तात्पर्य है जादू, टोना माना का तात्पर्य है टोना टोटका, शशिबाला का अर्थ है चंद्रमा रूपी सुंदरी या चंद्रमा की चांदनी, श्रीहीन का तात्पर्य है फीकी, सौंदर्यहीन, निष्क्रिय श्रम से ही श्रीहीन, चंद्रमा की चांदनी रात्रि भर श्रम के कारण फीकी पड़ गई थी। क्रोण का अर्थ है गोद, अलि से तात्पर्य है भ्रमर, कोक का तात्पर्य है चकवा, अस्तब्ध से तात्पर्य है निश्चेष्ट, बहुदर्शनी से तात्पर्य है सब कुछ देखने वाली, नभचारिणी का तात्पर्य है रात में विचरण करने वाली। संदर्भ: इन पंक्तियों में बाल विहंगनी को संबोधन करता हुआ कवि कह रहा है कि जब रात्रि की माया समस्त सृष्टि में फैल रही थी और प्राणी मात्र निद्रा निमग्न था, उस समय पहले तूने ही जागृति का गीत गाया। व्याख्या: सघन अंधकार से आच्छादित सृष्टि के अंधकार पूर्ण गर्भ में छाया के समान धुंधले दिखाई देने वाले दुष्ट राक्षस और प्रेत छिपे हुए थे। वे अपने छायाहीन शरीर से विचरण करते हुए जादू टोने का जाल रचने लगे, अर्थात रात्रि के सघन अंधकार में निशाचरी माया विचरण कर रही थी। रात्रि भर जागरण करने के कठिन श्रम से थक कर सुंदरी शशि बाल सौंदर्य हो अर्थात फीकी पड़कर अपना मुख छिपा रही थी। भाव यह है कि रात्रि समाप्त होने वाली थी, चंद्रमा अस्त हो रहा था और चांदनी फीकी पड़ गई थी। जैसे निरंतर जागती हुई आकाश के प्रांगण में चलकर थकावट के कारण उसका मुख फीका पड़ गया हो और अब वह मुख ढक कर विश्राम करना चाहती हो, साथ ही कमल की पंखुड़ियों के संकुचित होने के कारण भ्रमर उसके अंक में बंद पड़े हैं और चकवा अपनी प्रियतमा चकवी से बिछुड़कर अत्यधिक व्याकुल था। सृष्टि के प्राणियों की समस्त इंद्रियां रात्रि को निद्रा के कारण गतिहीन थी, अर्थात सारे प्राणी चुपचाप गहरी निद्रा में सो रहे थे। समस्त जड़ चेतन सृष्टि शून्यता में एकाकार हो रही थी। समस्त विश्व में नीरवता और शून्यता व्याप्त थी। संसार के सोने हृदय में केवल प्राणियों के सांसों की का आवागमन ही चेतना का एकमात्र प्रतीक था। इस नीरव एवं शून्य रात्रि के वातावरण में सारे रहस्य को समझने वाली और आकाश में विचरण करने वाली हे बाल विहंगनी, तूने ही सबसे पहले अपने जागरण गान से विश्व को जगा दिया। तेरे जागरण गान ने सारे विश्व में सौंदर्य, सुख और सुगंधित का जाल तान दिया। विशेष पॉइंट नंबर 1, छाया तन बहुछायाहीन। ऐसा लोग विश्वास है कि भूत प्रेतों के शरीर की छाया दिखाई नहीं पड़ती, स्त्री सुख से लेकर ताना बाना तक। पॉइंट नंबर 2, पक्षियों का कलरव सुनकर सारे प्राणी प्रभात का आगमन जानकर जाग उठते हैं। प्रातः काल में उषा का सौंदर्य नयनाभिराम दृश्य उपस्थित करता है। सुगंधित पवन अपने स्पर्श से प्रफुल्लित कर देती है और कार्यकलाप की चहल पहल चारों ओर प्रारंभ हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, कवि समय के अनुसार रात्रि में भ्रमर कोमल कोश में बंद हो जाता है और चकवी चकवा परस्पर बिछुड़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, रात्रि का वातावरण सजीव रूप में चित्रित हो उठा है। जादू टोना आदि के संयंत्र में षड्यंत्र रात्रि में ही होते हैं। छिपा रही थी पॉइंट नंबर 5, छिपा रही थी मुख शशिबाला, पौ फटने की व्यंजना है। रात्रि ढलने पर चंद्रमा की चांदनी फीकी पड़ जाती है। पॉइंट नंबर 6, यहाँ शशिबाला, अली और कोक तीनों दुखी हैं। यहाँ शशिबाला थक जाने के कारण मुँह छिपा रही है, चक्रवाक प्रियतमा के वियोग में रहता है और भ्रमर कोश में बंदी है। वस्तु बिंब विधान की दृष्टि से ये पंक्तियाँ बहुत सुंदर बन पड़ी हैं। पॉइंट नंबर 7, भावसाम्य। द रिवर ग्लाइडेथ एट हिज ओन स्वीट विल डियर गॉड, द वेरी हाउसेस सीन एज स्लीप एंड ऑल दैट माइटी इज लाइंग स्टिल। पॉइंट नंबर 8, अलंकार का मानवीकरण। अलंकार: शशिबाला का मुख छिपाना मानवीय क्रियाओं का उल्लेख है। खान प्रास: शब्द मैत्री और ध्वन्यात्मकता। निराकार तम मानो सहसा जगत पुंज में हो साकार, बदल गया दुत जगत जाल में धरकन रान नाम रूप नाना, सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल सुप्त समीरण हुआ अधीर, झलका हास कुसुम अधरों पर हिल मोती का सा दाना, खुले फलक फैली सुवर्ण छवि खिली सुरभि डोले मधुबाल, अस्पंदन कंपन और नवजीवन सीखा जग जग ने अपनाना, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी पाया यह स्वर्गिक गाना। शब्दार्थ, तम का अर्थ है अंधकार, ज्योति पुंज से तात्पर्य है प्रकाश का समूह, द्रुत से तात्पर्य है शीघ्र ही, जगत जाल का अर्थ है सांसारिक प्रपंच, पुलकित का तात्पर्य है रोमांचित, समीरण का अर्थ है पवन, खुले पलक का अर्थ है सभी जाग गए, सुरभि का अर्थ है सुगंधित पवन, मधुबाल का अर्थ है भ्रमर। प्रसंग, इन पंक्तियों में कवि बाल विहंगनी को सर्वप्रथम सूचना देने वाली को संबोधन करके रात्रि के व्यतीत होने पर ऊषा काल की सुषमा और चहल पहल का वर्णन कर रहा है। व्याख्या, सारा संसार जब अंधकार में डूबा हुआ था उस समय संसार की समस्त वस्तुएं आकारहीन होकर निराकार हो रही थी, रात्रि के अंधकार में समस्त वस्तुएं कालिमा में आवृत थी और उनका कोई आकार दिखाई नहीं देता था, संसार का को निराकार स्वरूप प्रदान करने वाला निराकार अंधकार सूर्योदय होते ही प्रकाश पुंज के रूप में साकार हो उठा, अंधकार में सृष्टि की समस्त वस्तुएं जो आकारहीन हो गई थी साकार हो गई, सूर्य की प्रथम किरण का स्पर्श होते ही वृक्षों के पत्ते पुलकित हो उठे और रात्रि के अंधकार में जो पवन सो रहा था बंद था वह चलने लगा और वृक्षों के पत्ते हिलने लगे, फूलों के अधरों पर हंसी फूट पड़ी अर्थात कुसुम खिल उठे और उनके ऊपर मोती के दानों के समान पड़ी हुई उसकी बूंदें सूर्य के प्रकाश में चमकने लगीं, संसार के प्राणियों की निद्रा खुल गई अर्थात वे निद्रा से जाग गए, चारों ओर उषा काल की किरणें पड़ने से सुनहरी आभा छा गई, सुगंध जाग कर चारों ओर फैल गई, फूलों पर भ्रमर मंडराने लगे, संसार ने नए रूप से नया जीवन नई गीत और नए उत्साह का अनुभव किया, बाल विहंगनी तूने ही सबसे पहले सूर्य की प्रथम किरण की सूचना अपने स्वर्गिक मधुर संगीत में दी, यह तो बता कि तुझे यह स्वर्गिक मधुर संगीत कहाँ मिला। विशेष पॉइंट नंबर 1, भाव साम्य, कर रही लीला में आनंद महाचित्त सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम इसी में होते सब अनुरक्त, निराकार तम से लेकर नाना तक। पॉइंट नंबर 2, इस पंक्तियों में दार्शनिक अभिव्यक्ति है, ब्रह्म निराकार अथवा अव्यक्त रूप में रहता है, समस्त नाना रूपात्मक जगत उसी में छिपा रहता है, जब अव्यक्त होकर अव्यक्त ब्रह्म व्यक्त होकर साकार रूप धारण करता है तब उसी से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, अर्थात यह सृष्टि अव्यक्त ब्रह्म का ही साकार रूप है, यहाँ अंधकार निराकार का और प्रकाश साकार का प्रतीक है। पॉइंट नंबर 3, गीता के निम्न श्लोक में इन पंक्तियों के भाव का साम्य है, अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः प्रभन्वत्यः रागमये रागमे प्रत्यागमे प्लीयन्ते तत्रैवाक्यात् संज्ञके। पॉइंट नंबर 4, प्रतीकात्मकता। पॉइंट नंबर 5, अलंकार का मानवीकरण, सहर उठे पुलकित मुख और अधरा जागो सुरभ में मानवीय क्रियाओं का वर्णन। ख, अनुप्रास, निराकार तम से लेकर नाना तक में उत्प्रेक्षा अलंकार, झलका हास कुसुम अधरों पर हिल मोती का सा दाना में उपमा अलंकार। दूसरा भाग मोह। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को, तजकर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को, तेरे भ्रू भंगों में कैसे विधवा दूं निज मृग सामन, भूल अभी से इस जग को। शब्दार्थ, द्रुम का अर्थ है वृक्ष, मृदु का अर्थ है कोमल सुखद, माया का अर्थ है मोह मवत्त, बाल जाल से तात्पर्य है केस पास, लोचन का अर्थ है नेत्र, भ्रूभंग का अर्थ है कटाक्ष। प्रसंग, मानवीय सौंदर्य की तुलना में कवि की प्रकृति का सौंदर्य अधिक स्पर्शनीय प्रतीत होता है, इसीलिए वह प्रकृति की ओर बरबस खींचता जाता है। किशोरी मानवीय सौंदर्य का प्रतिमान है, उसको संबोधित करता हुआ कवि कहता है। व्याख्या, वृक्षों की कोमल छाया छोड़कर, प्रकृति की ममता तोड़कर, हे किशोरी मन को लुभाने वाले, तुम्हारे केस राशि में मैं कैसे आसक्त हूँ। हे मन, तुम भटकाने वाले सांसारिक सौंदर्य के मोह में न पड़, प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है, उसकी तुलना में मानवीय सौंदर्य फीका और धोखायुक्त दिख पड़ता है। तरंग, तरल तरंगों वाले जल और सतरंगी इंद्रधनुष को छोड़कर, हे किशोरी तुम्हारे चंचल नेत्रों को कटाक्ष से अपने मृग के समान निर्मल और सुंदर मन को क्यों घायल होने दूं। विशेष, यह कवि की किशोरावस्था की कृति है। स्वार्थ से कलुषित और क्षणिक नारी सौंदर्य की तुलना में उसे प्रकृति का सौंदर्य अधिक पूर्ण और पवित्र दिखलाई पड़ता है। मानवीय सौंदर्य जटिल है और मनुष्य की सद्वृत्तियों को कलुषित करने वाला है। यहाँ कवि का पलायनवादी जीवन बोध प्रकट होता है। कोयल का वह कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल, कह तेरे ही प्रिय स्वर से कैसे भर दूं सजन श्रवण, भूल अभी से इस जग को। उस ससस्मित किसलय दल, सुधा रश्मि से उतरा जल, ना अधरामृत ही ने मद में कैसे बहला दूं जीवन, भूल अभी से इस जग को। शब्दार्थ, मधुकर का अर्थ है भ्रमर, सस्मित का अर्थ है साहस्य मंद मुस्कान, अधरामृत का अर्थ है अधरों का अमृत, सुधा रश्मि का अर्थ है चंद्र किरण। प्रसंग, पूर्व पंक्तियों में कवि मन एवं नेत्रों के आकर्षण की वस्तुओं का वर्णन ही करता है। उसके दृष्टिकोण प्रकृति विषयक एवं नेत्रज वस्तुएं ही तो सब कुछ नहीं, इनसे इतर श्रवण एवं स्पर्श भी तो आकर्षण है। प्रस्तुत पंक्तियों में इन्हीं भावों को व्यक्त किया गया है। व्याख्या, कोयल की स्निग्ध बोली और भौरों की वीणा जैसी मधुर गुंजार की कोई स्पर्धा नहीं है। ऐसी स्थिति में हे किशोरी तुम्हारे प्रणय वचन मेरे कानों को कैसे पा सकते हैं। उषा का आगमन होते ही नए नए पल्लों में अरुणिमा फूटने लगती है। उषा का चांदनी रात में अमृतमयी किरणें बिखेरने वाले जल की शोभा भी अपूर्व है। ऐसी स्थिति में हे किशोरी तुम्हारे अधरामृत को पीकर मतवाला बनकर जीवन की सरसता को कैसे भूल सकता हूँ। विशेष, प्रिया की बोली कितनी ही मीठी क्यों न हो, वह कोयल की बोल के समान कोमल और भौरों के गुंजार के समान मधुर नहीं हो सकती। इसी प्रकार प्रियतमा के आधारभूत में मिठास और तृप्ति नहीं है, जो रक्तिम वर्ण के पल्लवों और शीतल स्निग्ध में है। तीसरा भाग, आज रहने दो यह गृह काज, आज रहने दो यह गृह काज, प्राण रहने दो यह गृह काज, आज जाने कैसी वातास, छोड़ती सौरभ स्लथ उच्छ्वास, प्रिय लालस सालस वातास, जगा रोओं में सो अभिलाष। आज उड़के अस्तर अस्तर में प्राण, सजग सो सो स्मृतियाँ सुकुमार। दृगों में मधुर स्वप्न संसार, मर्म में मंदिर स्पृहा का भार। शिथिल स्वप्निल पंखुड़ियाँ खोल, आज अपलक कलिकाएं बाल। गूंजता भूला भौरा डोल, सुमुख उड़के सुख से वाचाल। आज चंचल चंचल मन प्राण, आज रे शिथिल शिथिल तरभार। आज दो प्राणों का दिन मान, आज संसार नहीं संसार। आज क्या प्रिय सुहाती लाज, आज रहने दो सब गृह काज। प्रसंग प्रस्तुत काव्य महान छायावादी महाकवि श्री सुमित्रानंदन पंत के गुंजन नामक काव्य से आज रहने दो यह गृह काज शीर्षक से उद्धृत किया गया है। श्री पंत जी ने भ्रमर एवं प्रकृति रूपी पुष्प के प्रीत को मानवीय भावनाओं से आबद्ध होकर बड़े ही मार्मिक शब्दों में प्रस्तुत किया है। व्याख्या। महाकवि श्री पंत जी प्रकृति काव्य के परम मर्मज्ञ कवि हैं। प्रस्तुत काव्य में महाकवि ने भ्रमर के जीवन की आंतरिक कथा का वर्णन करते हुए कहा है कि प्रकृति सौंदर्य से आबद्ध भ्रमर स्वयं कहता है कि आज संपूर्ण गृह कार्य छोड़ दो, क्योंकि आज प्रकृति के वातायन में अत्यंत ही विचित्र एवं अजीब स्पंदन उक्त वातावरण व्याप्त है। सर्वत्र मंद मंद सुगंध प्रवाहित हो रहा है। प्रकृति के आनंदमय वातायन एवं शीतल मंद सुगंध पवन के थपेड़ों से अजीब उल्लास जागृत हो रहा है। आज के सुरम में मौसम के फलस्वरूप मन में उल्लास उत्साह थिरकन व्याप्त हो रहा है तथा सैकड़ों स्मृतियां जागृत हो रही हैं। समस्त ज्ञानेंद्रियों में आनंद समाया हुआ है। भावनाएं जलत तरंगों की भांति हृदय स्थल में जागृत हो रही हैं। भ्रमर ऐसे सुरम्य वातावरण में प्रकृति के स्वरूप को देखकर उच्छृंखलित हो रहा है। उसका मन पूर्णतः समाविष्ट हो जाना चाहता है। वह स्वयं बोल उठता है कि सर्वांग शिथिल होते जा रहे हैं। आज परम मिलन का दिन ही आत्मा से आत्मा का मिलन है। आज संसार का स्वरूप ही बदला नजर आ रहा है। अतः हे प्रिय, आज समस्त गृह कार्य को छोड़कर इस परम रम में सुरम में स्पंदित कुस्मित वातावरण में पूर्ण प्रेम रस में विलीन हो जाने दो। विशेष पॉइंट नंबर 1, भाषा पूर्णतः शुद्ध खड़ी बोली एवं संस्कृत निष्ठ है। पॉइंट नंबर 2, अनुप्रास उपमा रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। पॉइंट नंबर 3, मालवीकरण का खुलकर प्रयोग हुआ है। पॉइंट नंबर 4, शैली व्याख्यात्मक एवं रहस्यात्मक है। पॉइंट नंबर 5, रस मूलतः श्रृंगार है। पॉइंट नंबर 6, काव्य छंद बंधित है। यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। चौथा भाग। बापू के प्रति बापू के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि से इस कविता में पंत जी ने बापू को आज के युग का उद्धारक एवं निर्माणकर्ता एवं प्रेरणादायक कहा है। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। शब्दार्थ, अस्थिशेष हड्डी ही बची है जिनकी, दुबले पतले शरीर वाले। बुद्ध का अर्थ है जागृत ज्ञानी, शुद्ध का अर्थ है निष्पाप पवित्र, पुराण का अर्थ है प्राचीन संस्कृति के पोषक, चिर का अर्थ है सर्वदा बने रहने वाले नित्य शाश्वत, नवीन का अर्थ है नवीन संस्कृति एवं पुनर्जागरण के प्रतीक। संदर्भ, यह कविता युगांत शीर्षक कृति की सर्वश्रेष्ठ कविता है। वास्तव में कवि ने महात्मा जी में मानवता का पूर्ण आदर्श प्रस्तुत कर लिया है। व्याख्या: विश्व बंधु बापू को कवि पूर्ण मानव का आदर्श मानता है। पहले वह उनके दुबले पतले शरीर को देखकर कहता है, हे बापू, तुम यद्यपि रक्तहीन और मांसहीन हो, तथापि तुम उच्च तथा महान हो। तुम यद्यपि हड्डियों से हीन हो, अर्थात तुम्हारे शरीर में मांस, रक्त और अस्थियों की कमी है, फिर भी तुम वास्तव में शुद्ध, जागृत और चैतन्य आत्मा के समान हो। तुम चिर पुरातन तथा चिर नवीन हो, अर्थात पुरातन संस्कृति के पोषक तथा नवीनता के प्रेरक हो। यद्यपि तुम्हारा बाह्याकार क्षीण है, फिर भी तुम सदैव पुरातन और सदैव ही नवीन चैतन्य आत्मा के समान अमर हो। विशेष पॉइंट नंबर 1, बापू ऋषियों के समान त्यागमय जीवन के समर्थक थे, पर युग के अनुकूल रूढ़ विरोधी भी थे, अतएव उन्हें चिर पुरातन एवं चिर नवीन कहा गया है। यहाँ विरोधाभास का आभास है। पॉइंट नंबर 2, अस्थिहीन से कठोरता रहित और अथवा भौतिक स्थूल आधार रहित होने का भाव ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध बुद्ध से कवि का तात्पर्य है कि महात्मा बुद्ध के समान शुद्धों आत्मस्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, पवित्र चेतनात्मक आत्मा का स्वरूप नित्यम अनादि है। इस हेतु चिर एवं नवीन दोनों उपाधियों से निहित की जा सकती है। पॉइंट नंबर 3, इस कविता में पंत जी को काव्य कुशलता, कलात्मक कौशल तथा भावुकता का पूर्ण परिचय मिलता है। बापू की शारीरिक स्थिति से प्रारंभ कर कवि उनके व्यक्तित्व की उच्च से उच्च, महान से महान तथा विकास की संभावनाओं एवं पूर्णताओं की ओर ले जाता है। शारीरिकता की अपेक्षा आत्म तेज बापू में अधिक था। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। शब्दार्थ: आसार भव का तात्पर्य है संसार, संपूर्ण संसार। भावी का तात्पर्य है भविष्य। समासीन का अर्थ है स्थित होगी, आधारित होगी, स्थिर होगी। शून्य लीन का अर्थ है खोया हुआ सा। व्याख्या: महात्मा गांधी को संबोधित करता हुआ कवि कहता है, तुम जीवन की एक पूर्ण इकाई थे, अर्थात तुम्हारे जीवन में जीवन की पूर्णता व्याप्त थी, जिसमें जिस पूर्णता में आसार तथा शून्य संसार लीन हो गया था, अर्थात तुम्हारे पूर्ण जीवन में सांसारिकता का लेश मात्र भी नहीं था। तुम वह अमर आधार थे जिस पर भविष्य की संस्कृति आधारित होगी। विशेष पॉइंट नंबर 1, जीवन की पूर्ण इकाई कहने से कवि का तात्पर्य है कि तुम अपने जीवन में अपने सिद्धांत अथवा सत्य को ही पूर्ण रूप से अनुसरण करते हो। पॉइंट नंबर 2, जिसमें असार भाव शून्यहीन कहने से तात्पर्य है जिसमें संसार की शून्यता व असारता अंतर्निहित हो चुकी है, तुम संसार के वैभव आदि से विरक्त हो, यह व्यंजना निकलती है। पॉइंट नंबर 3, तुम एक इकाई कहने से तात्पर्य है कि जीवन के पूर्णता एवं सर्वांगीण विकास के तुम प्रतीक हो। पॉइंट नंबर 4, तुम्हारे जीवन अमर आदर्श पर ही भावी संस्कृति निरूपित होगी। भावार्थ: तुम वह संपूर्ण व्यक्तित्व हो जिसमें यह मिथ्या सारहीन संसार समाहित हुआ करता है। तात्पर्य यह है कि संसार की उत्पत्ति परात्पर ब्रह्म से है और यह अंत में उसी में लीन भी होता है। एको अहम बहुश्यामी का फल ही तो वह माइक संसार है, जो उन लीलामय की लीला रुचि समाप्त होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। कभी बापू को उसी का स्वरूप मानता है, कभी बापू को नींव की ईंट अथवा उद्गम मानता है जिस पर भविष्य की सभ्यता का निर्माण होगा। पंत जी का भाव यह है कि जिस भांति प्रलय के उपरांत ब्रह्म से पुनः सृष्टि का नवोदय होता है, उसी भांति बापू के विचार दर्शन द्वारा भावी सभ्यता का निर्माण होगा। तुम मांस तुम्ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नवयुग का तन। तुम धन्य तुम्हारा निस्वह त्याग हो, विश्व भोग का वर साधन। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन। पीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानोपन। सदियों का दैन्य तम मिश्रित तुम धुन तुमने कात प्रकाश सूत। हे नग्न नग्न पशुता ढक दी बुन नव संस्कृत मानुजत्त पूत। पूत जग पीड़ित छूतों से प्रभूत, छू अमृत स्पर्श से हे अछूत। तुमने पावन कर मुक्त किए मृत संस्कृतियों के विकृत भूत। सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले बन तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना अहिंसा नम्र ओज। पशुता को पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। शब्दार्थ निस्वह से तात्पर्य है निस्वार्थ, भस्म काम से तात्पर्य है निष्प्रिय इच्छा रहित, रज का तात्पर्य है धूल, पूर्ण काम का अर्थ है पूरी हो गई है इच्छाएं जिनकी, काम से तात्पर्य है इच्छा। व्याख्या, तुम ही वह मांस रक्त और अस्थि हो जिसके द्वारा नवयुग के शरीर का निर्माण हुआ है। तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारा निस्वार्थ त्याग ही विश्व के भोगने का श्रेष्ठ साधन है, अर्थात तुमने निस्वार्थ रूप में विश्व को त्याग कर उसका निष्काम रूप से भोग किया है। समस्त इच्छाओं को भस्म करने वाले तुम्हारे शरीर की रज से ही पूर्ण कामनाओं को देने वाले नवजीवन जागृत होकर सत्य और अहिंसा के ताने बाने से मनुष्यता के वस्त्र बुनेगा, अर्थात तुम्हारे इच्छाओं के दमन से संसार का एक नवीन जीवन जागृत होगा जो सत्य और अहिंसा के आधार पर मानवता का निर्माण करेगा। विशेष पॉइंट नंबर 1, महात्मा जी के जीवन के 2 सिद्धांत सत्य और अहिंसा के ताने बाने से मानवता का पुट बनेंगे, अर्थात इन दोनों अमर सिद्धांतों से ही मानवता का विकास होगा। पॉइंट नंबर 2, समस्त इच्छाओं को भस्म करने वाला शरीर का विशेषण है। पॉइंट नंबर 3, तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि तुम्हारे उपादानों से ही भविष्य की नव मानवता शरीर धारण करेगी। पॉइंट नंबर 4, हो विश्व भोग का वर साधन तुम्हारा आत्मरहित त्याग ही संसार सुख का फलदान साधन तपश्चर्या है। पॉइंट नंबर 5, बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानोपन। गांधी जी के इच्छा रहित जीवन के विचार अवशेषों से वासना रहित आनंदमय जीवन का उदय होगा तथा बापू सत्य की अहिंसा को अंगीकार करके ही मनुष्य मनुष्यता ग्रहण करेगा। पॉइंट नंबर 6, उपनिषदों में तेन तक तेन बुंझी था विश्व को त्याग वृत्ति से भोगो। बापू ने निस्वार्थ त्याग द्वारा विश्व की समस्त संपत्ति अपने लिए सुलभ कर ली थी। पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। निद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जन प्रेम युक्ति। वर्ष्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणत उक्ति। विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग की बना मुक्ति। सहयोग सिखा शासित जन को शासन का दुर्वहर हरा भार। होकर निशस्त्र सत्याग्रह से रोका मिथ्या का बल प्रहार। बहुभेद विग्रहों में खोई ले जीर्ण जात छह से उबार। तुमने प्रकाश को कह प्रकाश और अंधकार को अंधकार। शब्दार्थ कारा से तात्पर्य है जेल। विश्वानुरक्त का अर्थ है विश्व प्रेमी। अनासक्त का तात्पर्य है त्यागी। दुर्वह से तात्पर्य है कठिन। भेद का अर्थ है विग्रह आपसी लड़ाई झगड़े। उवारलो उवारलो का अर्थ है बचा लो। क्षय का अर्थ है पतन। विमुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता। दुर्जय का अर्थ है जो कठिनाई से जीता जा सके अजेय। वर का अर्थ है श्रेष्ठ। प्रसूत का अर्थ है जन्म उद्भव। अनासक्त का तात्पर्य है सांसारिकता से दूर। अपरिणित का अर्थ है पूर्ण। शासित जन का अर्थ है प्रजाजन। सहयोग से तात्पर्य है मिलजुल कर काम करने की भावना। दुर्वह का अर्थ है भारी। भार का अर्थ है बोझ। निशस्त्र का अर्थ है अस्त्र रहित। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य का हठ। मिथ्या का अर्थ है झूठ। व्याख्या। तुमने पशुबल के बंदी गृह में बंधे हुए संसार को आत्मा की मुक्ति का द्वार दिखाया। अर्थात तुमने यह बताया कि हिंसा और पाशविक शक्ति के बंधन में रहकर भी आत्मा की शक्ति स्वतंत्र है। विद्वेष और घृणा की भावना से संघर्ष करने के लिए तुमने सदैव अजय रहने वाली प्रेम की युक्ति सिखलाई। तुमने अपने विचारों से पूर्ण युक्तियों को श्रेष्ठ परिश्रम के द्वारा कार्य रूप में परिणत करके उन्हें सफल कर दिया। अर्थात तुमने अपने उपदेशों को अपने श्रेष्ठ परिश्रम के द्वारा कार्य रूप में परिणत करके सफल बनाया। हे आसक्तिहीन, तुम विश्व भर से प्रेम करने वाले थे और तुमने विश्व त्याग को ही मुक्ति का साधन बनाया। तुमने प्रजा को राज्य के साथ सहयोग की भावना सिखाकर शासकों के असह शासन के बोझ कम कर दिए। तुमने शस्त्रहीन होकर भी सत्याग्रह से मिथ्यापूर्ण शक्ति के प्रहारों को रोक दिया। बहुत से भेदों तथा झगड़ों में खोई हुई शक्तिहीन जाति को तुमने बचाकर तुमने निर्भय होकर ज्ञान को ज्ञान और अज्ञान को अज्ञान बनाकर नष्ट होने से बचा लिया। विशेष विश्वानुरक्त है अनासक्त। संसार के व्यक्तियों से प्रेम करने वाले पर विलास में अनासक्त तुमने सर्वस्व त्याग दिया और इसी को मुक्ति का साधन बनाया। तुमने प्रकाश को कह अंधकार। वास्तविकता का ज्ञान तुमने कराया। सत्य का अवलंब लिया। रोका मिथ्या का बल प्रहार। झूठ के बल प्रहार को रोक दिया। पॉइंट नंबर 4 विद्वेष तात्पर्य यहाँ जलन दाह से है। पॉइंट नंबर 5 महात्मा गांधी ने श्रेष्ठ शारीरिक श्रम को मानसिक कार्य से संबद्ध कर उपकृत किया। अर्थात बुद्धिजीवियों को शारीरिक श्रम का महत्व बताया। पॉइंट नंबर 6 भारतीय जनता में विचार स्वातंत्र्य और त्याग तप श्रम की भावना का उदय बापू के प्रचार के साथ हुआ। उन्होंने कहा वरश्रय प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणित उक्ति। तुमने अपने मन में जो कुछ उक्ति सोची विचार परिणित उक्ति उसे श्रेष्ठ श्रम द्वारा कार्य रूप में परिणित करके परिश्रम प्रसूति से सफल कर दिया। उरके चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद। गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्प्रियाहाद। मानवीय कला के सूत्रधार हर दिया यंत्र कौशल प्रवाद। जड़वाद जर्जरित जग में तुम अवतरित हुए आत्मा महान। यंत्राभिभूत युग में करने मानव जीवन का परित्राण। बहु छाया बिंबों में खोया पाने व्यक्तित्व प्रकाशवान, फिर रक्त मांस प्रतिमाओं में फंसते सत्य से अमर प्राण। शब्दार्थ। विषय जनित विषाद का अर्थ है भोगवाद से उत्पन्न उदासी, स्प्रिया से तात्पर्य है इच्छा, आह्लाद से तात्पर्य है प्रसन्नता, यंत्र कौशल प्रवाद का तात्पर्य है कल कारखानों का मुंह, जड़वाद जर्जरित से तात्पर्य है भौतिक रूप से दुखी, यंत्र विभूत युग से तात्पर्य है मशीन प्रधान युग, मशीन से पराजित पीड़ित, परित्राण का अर्थ है रक्षा, छाया बिंब का अर्थ है भ्रम भूल भुलैया, रक्त मांस प्रतिमा का अर्थ है मनुष्य, निनाद का अर्थ है स्वर, स्पृहा का अर्थ है कामना, प्रवाद का अर्थ है चर्चा जनश्रुति, जड़वाद से तात्पर्य है अज्ञान अचेतन, जर्जरित का तात्पर्य है जीर्ण हुआ, परित्राण का अर्थ है रक्षा, छाया बिंबों का अर्थ है अंधकार की छाया में छिपे हुए, जड़वाद का अर्थ है भौतिकवाद, खोया से तात्पर्य है भ्रम भूल भुलैया, प्रकाशवान से तात्पर्य है उज्ज्वल प्रभावशाली शक्तिशाली, आत्मवाद से तात्पर्य है आध्यात्मवाद। व्याख्या। तुमने अपने हृदय के चरखे में युगों युगों के विश्व वासनाओं से उत्पन्न दुखों को सूक्ष्म रूप से काट कर सुख के धागों में परिणत किया। तुमने आत्मा की महत्ता की ध्वनि से संसार के जीवन रूपी आकाश को गुंजित कर दिया। हे मनुष्यों के हाथों द्वारा निर्मित कलाओं के व्यवस्थापक, तुमने खद्दर के सूतों में नवजीवन आशा कामना तथा आनंद को रंग रंग कर मशीनों में परिणता की ख्याति को नष्ट कर दिया। भौतिकवाद से जर्जरित संसार में तुम महान आत्मा वाले मानव उत्पन्न हुए, जिससे तुम मशीनों के प्रभाव में पड़े हुए युग में रहने वाले मनुष्यों के जीवन की रक्षा कर सके। तुम बहुत सी छाया की परछाइयों में भूल भुलैयों में खोए हुए मनुष्य के प्रकाशमान व्यक्ति को खोज निकालने के लिए रक्त मांस की मूर्तियों में अमर सत्य के प्रेम के भाव को जागृत करने में के लिए उत्पन्न हुए। विशेष पॉइंट नंबर 1, मानवीय कला के सूत्रधार गृह उद्योगों के संपर्क प्रवाद से, यहाँ पर अर्थ मोह से लिया जा सकता है। बहुछाया बिंब से तात्पर्य सांसारिक भूल भुलैयों में पड़े हुए, बहुत से छाया बिंब से तात्पर्य मनुष्य का देहों से भी तात्पर्य हो सकता है। प्रवाद से झंझट वाद विवाद से भी भाव ग्रहण किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, बहुत से छाया बिंब मनुष्य के देहों माया के मोहक स्वरूपों में खोए हुए व्यक्तित्व खोई हुई मानवता को प्राप्त करने के लिए व रक्त मांस की प्रतिमा को जिसमें जीवन व स्फूर्ति हो सत्य व अमरता का तुमने संदेश दिया। पॉइंट नंबर 4, कवि कहता है कि बापू के प्रयत्नों से ही सत्य अहिंसा का बल ग्रहण कर हमने विदेशी राज्य का समूहगत विरोध किया तथा अपने उद्योगों पर निर्भर कर अपने देश जाति को प्रोत्साहन दिया। पॉइंट नंबर 5, चरखे का कैसा अच्छा सांगरूपक आरंभिक पंक्तियों में है। मानवीय कला का सूत्रधार प्रयोग भी सार्थक एवं अभिप्राय है। पॉइंट नंबर 6, खाय से तात्पर्य दुर्बल नष्ट व क्षीण होती हुई है। संसार छोड़कर ग्रहण किया नरजीवन का परमार्थ सार, अपवाद बने मानवता के ध्रुव नियमों का करने प्रचार, हो सार्वजनिकता जयी अजित तुमने निजत्व निज दिया हार, लौकिकता को जीवित रखने तुम हुए अलौकिक हे उदार। शब्दार्थ। ध्रुव नियमों का अर्थ है वास्तविक सिद्धांत, सत्य और अहिंसा के आधारभूत अचल अटल नियम। संसार से अर्थ है भोग विलास ऐश्वर्य स्वार्थ, परमार्थ सार का अर्थ है पारमार्थिक तत्व परोपकार, अपवाद का अर्थ है नियम से छूट होना, सार्वजनिकता का अर्थ है जनमत लोकमत, जय का अर्थ है विजयी, अर्जित का अर्थ है अजय जो जीता ना जा सके, निजत्व का अर्थ है अपना व्यक्तित्व, हार का अर्थ है निछावर कर देना, लौकिकता से तात्पर्य है सांसारिकता, उदार का अर्थ है विशाल हृदय वाला। व्याख्या। तुमने सांसारिक जीवन भोग ऐश्वर्य आदि को त्याग कर मानव जीवन के यथार्थ तत्व पारमार्मिक तत्व को ग्रहण किया है। इस प्रकार संसार के अटल सिद्धांतों सत्य अहिंसा आदि का प्रचार करने के लिए तुम मानवता के प्रतिवाद बन गए, अर्थात मानव होकर तुम दैवीय जीवन की ओर आकर्षित हुए। हे अजय, तुमने जनमत की विजय हेतु अपना व्यक्तित्व निछावर कर दिया। हे उदार, लोक भावना को जीवित करने के लिए तुम स्वयं अलौकिक बन गए। विशेष पॉइंट नंबर वन, स्वार्थी मनुष्यों को सुख की कल्पना नहीं मिलती थी। उस समय महात्मा गांधी वास्तविक सुख का उद्गम खोजने के लिए प्रकट हुए और तभी जन जन में व्याप्त वासना जनित पीड़ा का अंत हो गया। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि महात्मा गांधी से मानव ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को जनहित के लिए बलिदान कर देना सीखा और सुख का भंडार प्राप्त हो गया। पॉइंट नंबर टू, अपवाद बन मानवता के। अधिकांश मनुष्य मानवता के नाम पर सांसारिक प्रपंच में ही फंसते हैं, पर तुमने वास्तविक सिद्धांत बताकर नया ही काम किया। सार्वजनिकता, विश्व मैत्री और विश्व बंधुत्व का संदेश, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। पॉइंट नंबर फोर, लौकिकता को जीवित रखने तुम हुए अलौकिक। हे उदार, तुमने सत्य हिंसा के आदर्श रखे जिसका अनुकरण कर लोक में सुख शांति रह सकती है। मंगल शशि लोलुप मानव थे विस्मित ब्रह्मांड परधि विलोक। तुम केंद्र खोजने आए तब सब व्यापक गत राग शोक। पशु पक्षी पुष्पों से प्रेरित उद्दाम काम जन क्रांति रोक। जीवन इच्छा को आत्मा के वश में रख शासित किए लोक। प्रसंग, प्रस्तुत पद्य में गांधी जी के सामाजिक वैचारिक सिद्धांतों की पुष्टि की गई है। सामाजिक समता एवं जनक्रांति के माध्यम से सामाजिक वैषम्यता को दूर करने की बात मंत्री जी अभिव्यक्त करते हैं। व्याख्या, वे कहते हैं कि जब पूरे विश्व की मानवता राग द्वेष एवं क्रोध से अभिशप्त थी, जब मंगल एवं चंद्र ग्रह के ऊपर मानवता विजय करने का स्वप्न देख रहा था, तब तुम शांति के दूत बनकर भारतीय संस्कृति की आधारशिला रखने इस जगत में आए। संस्कृति के केंद्र स्थल भारत को अपनी खोई हुई अस्मिता की पहचान कराने के लिए तुम दृढ़ प्रतिज्ञ उठे। पशु पक्षियों जैसे प्राकृतिक जीवन को अपना कर मानव को पशु जगत से उठाकर आध्यात्मिक जीवन की क्रांति आपने ला दी। आत्मविक्षिप्त मानव जब जीवन के वास्तविक मार्ग के तलाश में बेचैन था, तब तुमने आत्मा को वश में कर जीवन को शासित करने का उपदेश दिया। इस तरह अपने वैचारिक क्रांति के द्वारा तुमने विश्व को शासित करने का उपदेश दिया। वास्तव में तुम जग के पुरोधा थे। था व्याप्त दिशावधि ध्वांत भ्रांत इतिहास विश्व उद्भव प्रमाण। बहुहेत बुद्धि जड़ वस्तुवाद मानव संस्कृति के बने प्राण। थे राष्ट्र अर्थ जन साम्यवाद छल सभ्य जगत के शिष्ट मान। भू पर रहते थे मनुज नहीं बहुरूण रीत प्रेतो समान। तुम विश्व मंच पर हुए उदित बन जग जीवन के सूत्रधार। पट पर पट उठा दिए मन से कर नर चरित्र का नवोद्धार। आत्मा का विषय आधार बना दिस पल के दृश्यों को संवार। गागा एको अहम बहुश्याम हर लिए भेद भव भीति भार। प्रसंग, प्रस्तुत पद्य में सामाजिक वैषम्यता रूढ़वादिता एवं विशृंखल समाज को नई दिशा की ओर प्रेरित करने का कार्य गांधी जी ने किया, इस बात को कविपंत प्रकाशित कर रहे हैं। व्याख्या, जब मानवता का इतिहास अपने वास्तविक स्वरूप को खोकर दिग्भ्रमित हो रहा था, सारे जगत में साम्राज्यवाद के आटोपसी पंजे से मुक्ति के लिए मानवता व्याकुल हो रही थी। प्राचीन परंपरा के जंजीरों में जकड़ी हुई मानवता अपने राष्ट्र, अपने संस्कृति की वास्तविक स्वरूप को खोकर जड़ बुद्धि बनती जा रही थी। जब लोगों का आकर्षण आध्यात्मिकता से दूर होकर भौतिकता की ओर बढ़ रहा था, तब तुमने उसे अपने जीवन एवं विचारों से क्रांति लाकर जगत को नई दिशा प्रदान की। एक तरफ जब साम्यवाद का स्वर रूस में गूंज रहा था, तब भी भारत अपने प्रजातांत्रिक विचारों के प्रकाश प्रसार में लगा हुआ था। यह सब आपके ही प्रभाव के कारण था। जब शिष्ट एवं सभ्य लोगों ने छल को अपने जीवन में अपना लिया, तब ऐसा लगता था कि पृथ्वी पर मनुष्य नहीं, रूढ़ी और पुराने विचारों से ग्रसित प्रेत निवास कर रहे हैं, अर्थात मानव अस्तित्वहीन जिंदगी जी रहा है। तब उसी समय विश्व रंगमंच पर उपस्थित हो तूने विश्व को अपने चरित्रों से जीवन को नवोद्धार करने का सूत्र प्रदान किया। जीवन में शाश्वत आत्मा की ओर मानवता को आकर्षित कर आदर्शवाद एवं ईश्वरवाद की स्थापना की। सारे जगत को आपने बताया कि वह परमात्मा एक है और वही विभिन्न रूपों में सारे जगत में फैला हुआ है। उपनिषदों की इस युक्ति को आपने सिद्ध कर दिया। एको अहम बहुश्याम अपने छोटे से सूत्र वाक्य से मानवता में फैले हुए जाति भेद, जीवन बोध एवं जीवन के प्रति भय को समाप्त कर दिया। एकता इष्ट निर्देश किया, जग खोज रहा था जब समता, अंतर शासन चिन राम राज्य, अवाह आत्महन अक्षमता, हो कर्म निरत जन राग विरत, रत विरत व्यतिक्रम भ्रम ममता, प्रतिक्रिया क्रिया साधन अवयव है सत्य सिद्ध गति यति क्षमता। प्रसंग: इसमें गांधी जी के सामाजिक चिंतन एवं समाज को नई दिशा देने की सत्य साधना को उजागर किया गया है। व्याख्या: जब सारे संसार में शोषण एवं शोषित से व्याकुल मानव समता की धारा खोज रहे थे, तब तुमने भारतीय संस्कृति के चिर पुरातन राम राज्य की कल्पना एवं शासन के रूप रेखा प्रस्तुत कर दी। सारे शिष्ट विक्षिप्त अवस्था में आत्महनन एवं असमता के दौर से गुजर रहा था। अपने कर्म मार्ग से च्युत हो लोग एक दूसरे के प्रेम संबंध को भूलने लगे। चारों तरफ संबंधों के भ्रम फैल गए। एक मानो की पहचान भूलने लगे। एक दूसरे पर कार्यों का प्रत्यारोपण प्रतिरोध जब उपस्थित होने लगा, तब तूने सत्य मार्ग का अनुसरण कर सन्यासी की तरह मानव जगत को एक नई दिशा दे दी। हे राज्य प्रभा जन साम्य तंत्र, शासन चालन के कृतक यान, मानस मानुषी विकास शास्त्र, भौतिक विज्ञानों की प्रसूति, जीवन उपकरण चयन प्रधान, मत सूक्ष्म स्थूल जग बोले तुम, मानवता मानव का विधान, साम्राज्यवाद का कंस बंदनी, मानवता का पशु बाल क्रांत, श्रृंखला दासता प्रहरी बहु, निर्मल शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागृह में देव दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण को बढ़ती जमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। प्रसंग: इसमें मानव का भौतिकता की ओर आकर्षण एवं दासता के बंधन से मुक्त होने के प्रयास का वर्णन है। पंत जी कहते हैं कि सभी राष्ट्र जब साम्यवाद को प्रश्रय दे रहे थे, प्राकृतिक विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान का सूक्ष्म पर्यवेक्षण कर मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त करने को जिज्ञासु हो उठा था, तब तुमने महसूस किया कि मानव यह अपने लिए अभिशप्त जीवन का मार्ग तलाश रहा है। आपने उसे मानव के बीच गहरे संबंध को बलवती बनाया। पूरी पश्चिमी सभ्यता जब साम्राज्यवाद को आक्रोशित स्वरूप उद्घाटित कर विश्व को दासता के जंजीरों में जकड़ रहा था, मानवता आतंकित हो पशुवत बल रूप से कुचली जा रही थी। चारों तरफ दासता की श्रृंखला में जकड़ा शासन अपने पद से भ्रमित हो गया, तब तूने मानवता का जन्म भारतीय कारागृह में किया, अर्थात जब तुम साम्राज्यवाद से विश्व को मुक्त कराने के लिए जेल गए, तब ही दिव्य मानवता ने जन्म लिया। जन शोषण रूपी जो काली यमुना बह रही थी उसे तुमने कृष्ण की तरह अपने पैरों तले कुचल कर शांत कर दिया। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति बहुधर्म जाति गति रूप नाम बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रकृत काम आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम नानृतम जयति सत्यम माम भय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। युगांत से प्रसंग। इसमें गांधी जी को एक दिव्य मानव के रूप में उपस्थित कर पंत जी मानवता को मुक्त मानव मानवता का मुक्त मानव उन्हें घोषित करते हैं। व्याख्या। साम्राज्यवाद के भय से सारा जगत जब आक्रांत था संस्कृति बेदनी बन गई थी जीवन का आधार धर्म जाति अपनी गति को भूलकर अपना स्वरूप बदल रहे थे अर्थात लोगों को जब बलपूर्वक धर्म एवं जाति बदलने पर विवश किया जा रहा था सभ्य लोग जो स्वतंत्रता के आकांक्षी थे जेल जीवन जी रहे थे तथा पूरा पश्चिमी जगत विज्ञान के चकाचौंध में प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की घोषणा कर रहा था तब तुम मुक्त पुरुष की तरह इस धरा पर अवतरित हुए इस जगत में फैले हुए अनाचार एवं जड़ता के बंधन को काटकर राम रूपी सत्यता को स्थापित की और आपने स्पष्ट शब्दों में उपनिषद की उक्ति को उद्घोषित किया असत्य की कभी विजय नहीं होती सत्य कभी पराजित नहीं होता। इस बात को तुमने शुद्ध कर दिया इस तरह असत्य पर सत्य का विजय दिलाकर तुमने मानवता को नई दिशा प्रदान कर दी इसलिए हे सत्पुरुष तुमको कोटिशः प्रणाम है। सुमित्रानंदन पंत का काव्य पाठ यहीं पर समाप्त होता है। द एंड।